परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज भी प्रतिदिन की तरह अध्ययन के लिए तैयार हैं। मित्रों, हमने पिछले अध्ययन में अध्याय 16 को आरंभ किया था और हम हाजिरा के घर से भागने और परमेश्वर के दूत द्वारा बचाए जाने पर ध्यान कर रहे थे। आइए आज हम उसी अध्याय के आगे से अपने अध्ययन को आरंभ करें। तो कृपया आप अपनी बाइबिल, पेन और डायरी तैयार रखें। हम उत्पत्ति 16 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ते हुए आरंभ करेंगे। यहाँ पर लिखा है, तब यहोवा के दूत ने उसे शूर के मार्ग पर जंगल में एक स्रोत के पास पाकर कहा। मित्रों, मैं यहाँ पर ऐसा विश्वास करने के लिए मजबूर हो गया हूँ कि वह परमेश्वर का दूत और कोई नहीं परंतु यीशु मसीह का देह धारण करने से पूर्व का रूप है, अर्थात इस पृथ्वी पर आने से पहले का रूप, क्योंकि यही उसकी विशिष्टता है कि वह हमेशा खोए हुओं को ढूंढते हैं। हाजिरा ने घर से बाहर जाने के लिए अच्छे और पर्याप्त मात्रा में साधन लिया जो उसके मार्ग के लिए था। वो घर से काफी दूर निकल गई थी। तो आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 16 अध्याय और उसके 8 से 10 पद को पढ़ें। हे सारै की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है? और उसने कहा, मैं अपने स्वामिनी सारै के पास से भाग आई हूं। तब यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और अपने आप को उसके अधीन कर दे। इसके अतिरिक्त यहोवा के दूत ने उससे कहा, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि उनकी गिनती न हो सकेगी। मित्रों, गलतियों की पत्री उसके 4 अध्याय में पौलुस प्रेरित इसे एक दृष्टांत या एक रूपक या एक कथा के रूप में प्रयोग करते हैं। वह वहां पर हाजिरा और उसके वंशज को सीनै पर्वत कहता है, जहां मूसा को व्यवस्था दी गई थी, और वह व्यवस्था की वैधता और दासत्वता की भी बातें करता है। तब वह सारे के विषय में कहता है कि वह स्वतंत्र है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जो अब्राम की है वह तो सारा ही थी जो उसकी पत्नी थी। आज बहुत से लोग इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखते हैं और वे व्यवस्था के अधीन होना चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो विश्वासी हैं, यीशु मसीह से जुड़ चुके हैं, कलीसिया मसीह की दुल्हन है, और पौलुस प्रेरित कहते हैं यह पवित्र कुंवारी के जैसे है जो एक दिन मसीह की दुल्हन बन जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको व्यवस्था के अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था एक दूसरी चीज है जिसे मुझे और आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। यह हाजिरा के जैसा है, और यही विषय है जिसे पौलुस प्रेरित गलतियों के विश्वासियों को बता रहे हैं। मित्रों, यहां हाजिरा के कारण एक बड़ी तकलीफ आने वाली है, और वह सिर्फ सारै को ही नहीं, परंतु इसका दुख बाद में अब्राम को कहीं अधिक होने वाला है। अब हाजिरा वापस अपने स्वामी के पास बच्चे को जन्म देने के लिए आती है। जो पुत्र वह जनेगी वह अब्राम का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि हाजिरा इसके लिए इब्राहिम को दी गई थी। उत्पत्ति की पुस्तक 16 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, और यहोवा के दूत ने फिर कहा, देख तू गर्भवती है और तू एक पुत्र को जन्म देगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे कष्ट की ओर ध्यान दिया है, और वह मनुष्य जंगली गधे के समान होगा, और उसका हाथ सबके विरोध उठेगा, और सबके हाथ उसके विरोध उठेंगे, और वह अपने सब भाइयों के सामने बसा रहेगा। मित्रों, क्या आपने कभी इस पद को लगभग 4000 वर्ष पूर्व के मध्य पूर्व देशों के इतिहास की दृष्टिकोण या तुलना में देखा है कि आज वहां पर क्या हो रहा है? इश्माएल के वंशज जंगली मनुष्य हैं। यह बेडुइन जाति की कहानी है जो शताब्दियों से मरुभूमि अर्थात निर्जन में रहते आए हैं, और यह परमेश्वर की भविष्यवाणी का पूर्ण होना है जो उसने की थी। वे आपसे कहेंगे कि वे अब्राहम की संतान है, परंतु वे इश्माएल की भी संतान है। वे इश्माएल के द्वारा से अब्राहम के भी संतान या संबंधी हुए या उसके साथ जुड़ गए हैं। तो अब हम उत्पत्ति 16 अध्याय उसके 13 और 14 पद को पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब यहोवा जिसने उससे बातें की थी उसका नाम उसने तू देखने वाला ईश्वर रखा, और कहा, क्या मैं उसे देखने के पश्चात भी जीवित रह सकी? इस कारण उस कुएं का नाम बेर लह रोइर पड़ा। यह कादेश और बेरेत के बीच में है। मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हाजिरा के प्रति कितना दयालु है। वह दयालुता से हाजिरा के साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि यह हाजिरा का पाप नहीं है। मैं यहां पर फिर से दोहराना चाहता हूं कि परमेश्वर का दूत और कोई नहीं, परंतु यीशु मसीह का पूर्व अवतार है जो खोए हुए को ढूंढने के लिए बाहर आया। वह इसी प्रकार का चरवाहा है जो उसे यह सुंदर वचन लाकर देता है, तब यहोवा जिसने उससे बातें की थी उसका नाम उसने देखने वाला ईश्वर रखा। यह उसके लिए एक नई बात थी जिसे उसने पहले ध्यान नहीं दिया था। मिस्री लोग आदिकालीन और परमेश्वर के बारे में अधिक नहीं जानते थे, और वह कहती है, क्या मैं उसे देखने के पश्चात भी जीवित रह सकी? परमेश्वर को देखने के सत्यता के द्वारा वह अभिभूत हो गई कि उसने परमेश्वर को देखा है। आज के दिनों में यह हम लोगों के लिए उतना प्रभावपूर्ण नहीं लगता, क्योंकि परमेश्वर के प्रति हमारे विचार या दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक ऊंचे हैं। लेकिन एक मिनट के लिए ठहरिए, हम लोग इतनी दूर तक आ गए हैं और संभवतः हम भी परमेश्वर के बारे में उतना नहीं जानते हैं जैसे हाजिरा नहीं जानती थी। वास्तव में एक छोटे और सीमित बुद्धि वाले मनुष्य के लिए परमेश्वर को समझना जो असीमित है बहुत कठिन बात है, और हम सब उसे और उसके बारे में पूर्ण रीति से नहीं समझ सकते हैं। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर को जानना यही एक विषय है जो हम सबको इस युग के अंत से लेकर अनंत काल तक व्यस्त रखेगा, वह जो प्रत्येक व्यक्ति के अध्ययन के योग्य है। परमेश्वर के पास आना और उसे जानना एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के पद को अनंत काल तक के लिए ऊंचा कर देगी। मित्रों, आइए अब हम इश्माएल के जन्म के विषय में देखें, उत्पत्ति उसका 16 अध्याय और उसके 15 और 16 पद में। अतः हाजिरा से अब्राहम के एक पुत्र हुआ। अब्राहम ने अपने इस पुत्र का नाम जो हाजिरा से जन्मा था इस्माइल रखा, जिस समय हाजिरा से अब्राम का पुत्र इश्माइल उत्पन्न हुआ उस समय अब्राम 86 वर्ष का था। प्रिय मित्र, इस बात को याद रखें कि इश्माइल अब्राम का पुत्र है और अब्राम उस समय 86 वर्ष का था। और आगे हम अब्राम की परीक्षा में पढ़ने के विषय को देखेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं परमेश्वर द्वारा अब्राम को 7 बार दर्शन दिए जाने का सारांश आपको बताना चाहता हूं। 5 के बारे में हमने पहले ही देख लिया है। अब्राम के जीवन में कुछ निश्चित असफलताएं तो रही है, परंतु उसके साथ साथ सफलताएं भी रही है। वास्तव में 7 परीक्षाएं परमेश्वर ने अब्राम को दी थी। सबसे पहली कि परमेश्वर ने अब्राम को कसदियों के उर देश से बुलाया, जहां उसका घर था, और अब्राम ने इस बुलाहट को आधा स्वीकार किया। उसका विश्वास कमजोर और अधूरा था, लेकिन वह कम से कम वहां से निकल गया और अंततः अब्राम कनान देश में पहुंच गया और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। और दूसरा है, तब वह कनान में अकाल पड़ा और अब्राम कनान से मिस्र देश को चला गया और वहां पर उसने संपत्ति और हाजिरा को प्राप्त किया, और दोनों ही उसके जीवन में रुकावट का कारण बने। और तीसरा, अब्राम को धन संपत्ति मिली जो वास्तव में उसके लिए कठिन था। वे अक्सर बहुत से लोगों के जीवन में रुकावट के कारण बन जाते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रभु मुझे वैसी परीक्षा में ले चले जिसमें से होकर मैं आज तक नहीं गया हूं, उसमें नहीं जिसे मैंने पार कर लिया है। लेकिन शायद परमेश्वर मुझ पर भी संपत्ति के प्रति कभी भरोसा नहीं करते। अब्राम परमेश्वर को नहीं भूला। वह निश्चय ही अपने भतीजे के प्रति उदार और विशाल हृदय रखता था। उसके धन संपत्ति ने उसे और लूत को अलग अलग कर दिया और परमेश्वर ने दोबारा उसे दर्शन दिया। अब चौथा है, पूर्व के राजाओं के द्वारा अब्राम को अधिक अधिकार दिया गया। वह उसके लिए एक वास्तविक परीक्षा थी। उसके लिए ऐसा हुआ कि वह विजयी हो गया था और मलकीसेदेक उससे मिला। मैं सोचता हूं कि उसने अब्राम को परीक्षा के लिए उत्साहित किया, इसलिए उसने युद्ध की लूट को ठुकरा दिया। और हम देखते हैं कि बाद में परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और प्रोत्साहित भी किया। अब पांचवा है, परमेश्वर ने अब्राम को उसकी पत्नी सारै से पुत्र देने में देरी की और अब्राम इंतजार नहीं कर सका और सारै के उसकाने पर उसने परमेश्वर के कार्य को अपने हाथों में ले लिया और परमेश्वर की इच्छा के बाहर काम भी किया, अर्थात चला गया। इसके परिणाम स्वरूप इश्माएल का जन्म हुआ और अब अरब देश आज भी इसराइल देश को तंग करता है। वे ऐसा करते ही रहेंगे और मैं समझता हूं कि सतयुग या स्वर्णयुग तक यह ऐसा ही चलता रहेगा। अब्राम की दो और परीक्षाएं, जो छठवां है, सदोम और अमोरा के विनाश में पाई जाती है, जो उत्पत्ति उसके 18 अध्याय में है। और सातवां, अपने बेटे इसहाक को बलिदान चढ़ाना है, जो उत्पत्ति 22 अध्याय में मिलती है। तो मित्रों, ये ही 7 परीक्षाएं थी जिसे परमेश्वर ने अब्राम के लिए रखी थी। और इसी के साथ अध्याय 16 भी यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन हम अपने अध्ययन को जारी रखते हुए अध्याय 17 में प्रवेश करेंगे। इस अध्याय के बारे में बहुत लोगों का मानना है कि यह उत्पत्ति की पुस्तक में एक असाधारण अध्याय है। यहाँ पर परमेश्वर अब्राम से वाचा बांधते और उसे वाचा का सही किरण देते हैं जो उसके पुत्र के बारे में है। वह अब्राम को बताते हैं कि इश्माएल वह पुत्र नहीं है जिसके लिए उसने वायदा दिया है। एक तरीके से देखा जाए तो यह अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक की कुंजी के जैसे है, और हो सकता है कि यह पूरे बाइबल की कुंजी हो। परमेश्वर की वाचा अब्राम के साथ दो बातों पर आधारित है। पहला, बीज अर्थात संतान, और दूसरा, भूमि अर्थात देश। उसने अपने आप को अब्राम पर नए नाम के साथ प्रकट किया, एल शदाई, जिसका अर्थ है सर्व सामर्थी परमेश्वर। और उसने अब्राम को भी एक नया नाम दिया, अब्राहम से इब्राहिम। इससे पहले तक उसका नाम अब्राम था और अब यह बदलकर इब्राहिम हो गया है। अब्राम का अर्थ है उच्च पिता और इब्राहिम का अर्थ है बहुतों का पिता। इश्माएल वह पुत्र नहीं था जिसका परमेश्वर ने अब्राम से वायदा किया था। इसके बारे में यह अध्याय हमें स्पष्ट करता है। तो आइए हम आगे बढ़ें, जहां परमेश्वर एक नए नाम से प्रकट होते हैं और अब्राम को भी एक नया नाम देते हैं। मित्रों, आइए हम उत्पत्ति 17 अध्याय के एक पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने अब्राम पर प्रकट होकर उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। मित्रों, आप यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए और सोचिए, जब इश्माएल का जन्म हुआ उस समय अब्राहम की आयु 86 वर्ष की थी और 14 वर्ष के बाद इसहाक जन्मा। परमेश्वर अब्राहम पर प्रकट हुआ और उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू मेरे सम्मुख चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर कहता है, मैं एल शदाई अर्थात सर्वसामर्थी परमेश्वर हूँ। यह एक नया नाम है जो परमेश्वर ने इब्राहिम को बताया। आइए हम अगले पद उत्पत्ति 17 उसके 2 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा और मैं तुझे अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। मित्रों, इसी अध्याय में वाचा यह शब्द 13 बार आया है। यह 13 बार मात्र 27 पदों के अंदर में ही मिलता है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर निश्चय ही वाचा के बारे में बात कर रहे हैं और यह अब्राहम के लिए परमेश्वर का 5वां दर्शन है। इस बार परमेश्वर सिर्फ वाचा बांधने के लिए नहीं आते हैं, परंतु पुत्र देने की प्रतिज्ञा को पुनः निश्चित करने के लिए आते हैं, जिसे उसने अब्राहम को देने के लिए प्रतिज्ञा की थी, जो इश्माएल को बिल्कुल वर्जित करता है। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय में लिखता है, रोमियो 4 अध्याय उसका 19 पद, वह जो 100 वर्ष का था अपने मृतक समान शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई दशा जानते हुए भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। मित्रों, सारे का गर्भ वास्तव में एक कब्र था, अर्थात मरी हुई स्थिति में था, और देखा जाए तो यह एक मरण स्थान था, और इस मरण स्थान से भी जीवन निकलकर आया तथा इसहाक का जन्म हुआ। पौलुस प्रेरित रोमियो की पत्री 4 अध्याय का समापन यह कहते हुए करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, वह कहते हैं, वह हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया भी गया। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 25 पद में हम इसे पढ़ते हैं। मृत्यु से जीवन देने का वायदा परमेश्वर अब्राहम के द्वारा यहां पर करते हैं, और अब अब्राहम की आयु 99 वर्ष की है, और इसका मतलब यह हुआ कि सारे की आयु 89 वर्ष की है। जब इसहाक का जन्म हुआ तब अब्राहम की आयु 100 वर्ष और सारे की आयु 90 वर्ष की थी। मित्रों, अब हम आगे उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17 और उसके 3 और 4 पद को हम पढ़ते हैं। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे यह कहकर बातें करने लगा, देख मेरी वाचा तो तेरे साथ है और तू कई जातियों का मूल पिता होगा। मित्रों, परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं कि वह बहुत राष्ट्रों का पिता होगा। मैं मानता हूं कि ऐसा कहा जाना चाहिए था कि इसकी पृथ्वी पर जीवित और दूसरे लोगों से अधिक संतान थी। जो इस पृथ्वी पर जीवित रहे व्यक्तियों में से सबसे अधिक संतान अब्राहम के ही हैं, जहां तक हम लोग जानते हैं कि यही सत्य है। आप जरा सोचिए कि 4000 वर्ष पर दो ही महान वंश, एक इश्माएल का और दूसरा इसहाक का है, और प्रत्येक वंश या पीढ़ी में लाखों लोग थे। यह कितना अद्भुत परिवार था, कितनी अच्छी घर वापसी थी। इसी में जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि इसके अलावा और एक आत्मिक बीज भी था। हम जो मसीही लोग हैं अब्राहम की संतान कहलाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास लाने के द्वारा से। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसके 16 पद में अब्राहम के बारे में लिखा है, जो हम सबका पिता है। वह विश्वासियों के लिए, इसराइल जाति के लिए और अरब देश के लोगों के लिए भी है। उन लाखों लोगों के बारे में जरा सोचिए। परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा, और उसने यह वायदा पूरा भी किया है। अब उत्पत्ति 17 अध्याय के 5 पद में हम पढ़ते हैं, तेरा नाम अब से अब्राहम न रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराऊंगा। मित्रों, अब्राहम का अर्थ है उच्च पिता या उच्चाइयों का पिता या उन्नत पिता, और इब्राहिम का अर्थ है बहुतों का पिता। मैं आपके लिए उदाहरण के तौर पर एक कहानी बताना चाहता हूं जो इस व्यक्ति अब्राहम के विश्वास के विषय में है। मान लीजिए कि एक सुबह अब्राहम और सारे उठते हैं और जैसे रोज की तरह तंबू के चारों ओर कुछ काम कर रहे हैं, और अचानक से एक व्यापारियों का दल उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है और अब्राहम उनसे मिलने के लिए उनके पास जाता है, और वे जानना चाहते हैं कि क्या वह उनके ऊँटों को पानी पिला सकता है। मित्रों, उन दिनों में इस प्रकार अतिथि सेवा करने वाले बहुत लोग हुआ करते थे, और यह बिल्कुल ही रुचिदायक बात है। हम लोग गुफा में रहने वाले मानव के बारे में बातें करते हैं कि वह कितना भयानक रहा होगा। क्या मैं आपको बताऊं कि उन दिनों में कोई भी आगंतुक या राहगीर किसी नगर या देश में से तब तक होकर नहीं जा सकता था जब तक कि कोई उसके लिए अपने घर का द्वार ना खोल दे और उसका मनोरंजन ना करे। परंतु यदि आप हमारे देश के किसी भी शहर में जाएं, तो यह संभव ही नहीं है कि कोई आपको अपने घर के अंदर ले जाए और एक गिलास पानी पिलाए। यद्यपि बहुत सी मसीही शहरों में पाए जाते हैं, फिर भी यह असंभव लगता है। आज हमारी संस्कृति बिल्कुल बदल गई है और निश्चित तौर से आज हम अतिथि सत्कार करना भूल चुके हैं, जैसे कि पहले के दिनों में हमारे पूर्वज किया करते थे। मित्रों, अब्राम उनसे मिलने के लिए जाता है और कहता है, यदि मुझ पर कृपा दृष्टि है तो अपने दास से यूं ही न जाएं, मैं कुछ रोटियां ले आऊंगा, क्या आप सब थोड़ी देर यहां ठहर सकते हैं? उन्होंने कहा, नहीं, हम सब इस समय व्यापार के लिए निकले हैं और हमें जल्दी से मिस्र देश में पहुंचना है। उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम अली है और दूसरा कहता है मेरा नाम अली बाबा है, तुम्हारा नाम क्या है? तब अब्राहम ने उत्तर दिया, मेरा नाम उच्च पिता है। तब वे लोग आश्चर्यचकित हुए और कहा कि तुम्हारे कितने बेटे और बेटियां हैं? तब अब्राहम ने कहा, मेरा एक भी पुत्र नहीं है। वे लोग हंसकर बोले, तुम यह कहना चाहते हो कि तुम्हारे एक भी संतान नहीं है और तुम्हारा नाम अब्राहम है? तुम इस तरह संसार में पिता कैसे हो सकते हो बिना किसी संतान के? और वे हंसते हुए वहां से चले गए और रास्ते भर हंसते ही रहे। 6 महीने के बाद वे उसी रास्ते से वापस आए। जब वह पुनः उनसे मिलने के लिए जा रहा था, तब वे फिर से हंसना आरंभ कर दिए। कहिए उच्च पिता, परंतु उसने कहा, अब मेरा नाम उच्च पिता नहीं रहा, अब मेरा नाम बहुतों का पिता है। व्यापारियों ने कहा, हो सकता है इसके पास जुड़वा बच्चे हों। तब अब्राहम ने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं है, अभी भी मेरे पास संतान नहीं है। तब वे फिर से हंसने लगे। उन्होंने उससे कहा, यह इतनी बेतुकी कैसे हो सकती है? मित्रों, यहां पर एक व्यक्ति था जो पिता था इससे पहले कि उसके पास कोई पुत्र हो। इब्राहिम ही था बहुतों का पिता। उस समय वह विश्वास के द्वारा था, परंतु 4000 साल के बाद जहां आप और मैं बैठते हैं, अब हम कह सकते हैं कि परमेश्वर ने इसे कर दिखाया। यदि आपका नाम कहीं रुक गया है तो आप निवेदन करें और यह याद रखें कि वह अभी भी इब्राहिम ही है, बहुतों का पिता। आइए आगे देखें परमेश्वर की वाचा बीज और भूमि के बारे में। हम उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं, मैं तुझे अत्यधिक फलवंत करूंगा और तुझसे राजा उत्पन्न होंगे। क्या परमेश्वर ने सही प्रतिज्ञा की? निश्चय ही उसने सही प्रतिज्ञा की है। हम उत्पत्ति 17 अध्याय उसके 7 पद में पढ़ते हैं, मैं अपने और तेरे बीच अपनी वाचा बांधूंगा तथा तेरे पश्चात तेरे वंश और उनकी पीढ़ी से पीढ़ी के साथ सदाकाल की वाचा इस आशय से बांधूंगा कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर ठहरूं। मित्रों, परमेश्वर किस प्रकार की वाचा इब्राहिम के साथ बांध रहे हैं? एक अनंतकालीन वाचा। यदि यह अनंतकालीन वाचा है तो क्या आज भी कायम है? निश्चय ही यह अच्छी है और कायम है। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे भी वायदा किया है, यदि कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे तो वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यही वह वाचा है जिसे परमेश्वर ने बांधा है। मित्रों, यदि परमेश्वर इस वाचा को जिसे उसने इब्राहिम के साथ बांधी है अच्छा या पूरा करने नहीं जा रहा है, तो आपको अपनी अच्छाई खुद देख लेनी चाहिए। परंतु आपके लिए मेरे पास एक संदेश है, वह आपके साथ किए गए वाचा को पूरा करने जा रहा है और वह इब्राहिम के साथ की गई वाचा को भी पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वे कभी झूठ नहीं बोलते। आइए अब हम उत्पत्ति 17 अध्याय के 8 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा है, मैं तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह सारा कनान देश जिसमें तू प्रवासी होकर रहता है युग युग के लिए दे दूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। मित्रों, यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं कि वह क्या करने जा रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं करूंगा, मैं तुझे अधिक फलवंत करूंगा और तुझसे एक जाति उत्पन्न करूंगा और तेरे और मेरे बीच में एक वाचा स्थापित करूंगा और तेरे संतानों के साथ भी, और मैं तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को यह कनान देश युग युग के लिए दे दूंगा। मित्रों, परमेश्वर ने जो वाचा इन लोगों के साथ बांधी थी वह एक पीढ़ी के लिए नहीं परंतु अनंतकालीन वाचा थी। यह वह वाचा है जो आसानी से नहीं तोड़ी जा सकती है, और यह वह वाचा भी नहीं है जो छूट कर भाग जाए, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें यह जमीन या देश 99 साल के लिए पट्टे पर नहीं दी थी, परंतु उसने उन्हें यह जमीन व देश युग युग के लिए दे दी है ताकि उस पर अधिकार रखें और वह उनकी हो जाए। कनान देश में यहूदी लोग 3 बार अलग अलग समय पर रहे और यह उनका ही है, परंतु एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वे इसे अपने अधिकार में कुछ निश्चित शर्तों के अंतर्गत ही कर सकते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश में भेज दिया और वे वहां पर सताए गए। वे मिस्र देश में एक परिवार के रूप में लगभग 70 लोग गए थे, लेकिन वे राष्ट्र बनकर वहां से निकले और उनकी संख्या 10 से 15 लाख तक की थी। वे फिर से अपने देश से बाहर बाबुल की गुलामी में चले गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की गवाही नहीं दी और वे अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे। और हम देखते हैं कि वे 70 AD अर्थात ईसवी सन में पुनः बंधुआई में चले गए जब उन्होंने मसीह का तिरस्कार किया, और वे कभी भी लौटकर वापस नहीं आए। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि वे 3 बार देश से बाहर बंधुआई में जाएंगे और 3 बार फिर से अपने देश में लौटेंगे। वे 2 बार यानी 2 किस्त में लौटकर वापस आए। मैं नहीं समझता कि वर्तमान में जो लोग लौटकर वहां रह रहे हैं वो जब वे अगली बार लौटेंगे, तो मैं उसे इस रीति से लेता हूं कि वे फिर कभी भी बाहर किसी गुलामी में दोबारा नहीं जाएंगे। यह सतयुग और स्वर्ण युग होगा जब परमेश्वर सबको वापस उनकी प्रतिज्ञा की भूमि में या देश में लाएंगे अर्थात इकट्ठा करेंगे। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले अध्ययन में हम इसके अगले पदों को देखेंगे। आप सब प्रभु में बने रहें और प्रभु के संगति में स्थिर रहें। प्रभु आपको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें: कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए: कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।